की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की गई है, क्या सार है इस रिपोर्ट का, किन प्रमुख बातों पर प्रकाश डाला गया है इसमें?
यूएनएफपी की जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है हर साल जनसंख्या, विकास और अधिकारों के अहम मुद्दों पर रोशनी डालती है। इस साल ये रिपोर्ट दुनिया भर में होने वाले हार्मफुल प्रैक्टिसेस यानी कि हानिकारक प्रथाएं या फिर जिन्हें हम आमतौर पे कुप्रथाओं के रूप में समझते हैं उन पे आधारित है। रिपोर्ट में देखा गया है कि कुप्रथाएं कहाँ होती है, किस हद तक होती है, उनकी व्यापकता क्या है और कुप्रथाएं क्यों होती है, उनके क्या कारण है और ये भी देखा गया है कि उन्हें रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। रिपोर्ट में 19 कुप्रथाओं की पहचान की गई है, जैसे कि दहेज से जुड़ी हिंसा या फिर वो अपराध जो हम ऑनर के नाम पे सुनते हैं कि की जाती है और आमतौर पे जिन्हें ऑनर किलिंग कहा जाता है। कुल मिला के रिपोर्ट में उन सभी कुप्रथाओं पे गौर किया गया है जिनसे मानव अधिकार का उल्लंघन होता है। खास तौर पे रिपोर्ट 3 प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करती है जो व्यापक और निरंतर है। वो है बाल विवाह, जेंडर आधारित लिंग चयन जो बेटों को ज्यादा महत्व देने से जुड़ी हुई है और फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जिसे हम हिंदी में महिला खतना कहते हैं।
जैसे कि आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट में विशेष रूप से इन 3 कुप्रथाओं को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया गया है, इस बारे में भारत के आंकड़े क्या कहते हैं और इससे निपटने में अब तक क्या प्रगति हुई है?
3 कुप्रथाओं को जिनका वर्णन मैंने किया है उनमें से बाल विवाह और जेंडर भेदभाव आधारित लिंग चयन भारत में व्यापक रूप से प्रचलित है। महिला खतना भारत में एक सीमित रूप से कुछ प्रांतों में प्रचलित है। पिछले 1 दशक में विश्व स्तर पर और भारत में बाल विवाह की व्यापकता में काफी गिरावट देखी गई है और अगर हम नेशनल डेटा को देखें जो कि रिपोर्ट में भी कोट की गई है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उनके आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 27% लड़कियां 18 साल की उम्र से पहले शादी करती हैं। 1 दशक पहले यही दर 47% पर थी। भारत की प्रगति ने पूरे दक्षिण एशिया के बाल विवाह के दर में 50% की गिरावट में योगदान दिया है। तो फिर हम देखते हैं कि बाल विवाह में काफी हद तक भारत में गिरावट देखी गई है। दूसरी जो कुप्रथा की बात की गई है इस रिपोर्ट में वो है जेंडर भेदभाव आधारित लिंग चयन और रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है, इसके आंकड़े भी दिए गए हैं, वो भी नेशनल डेटा पे ही बेस्ड है। पर मैं जो मोस्ट रिसेंटली रिलीज डेटा है, जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की डेटा है सरकार की, उस पे गौर करना चाहूंगी। उसके आंकड़ों के अनुसार भारत में हर 1000 लड़कों पे 899 लड़कियां पैदा हो रही हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के डेटा के अनुसार। और जो स्वाभाविक जन्म के समय का लिंग अनुपात माना जाता है वो 950 लड़कियों का पैदा होना ये दर स्वाभाविक माना जाता है। तो अगर हम देखें तो 899 काफी गैप है 899 में और 950 या 950 की। पिछले साल के आंकड़ों से अगर हम इसे कंपेयर करें तो हाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखा गया है क्योंकि पिछले साल 896 था ये दर 896। तो पूरे देश भर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ स्टेट्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 9 ऐसे राज्य हैं जो 900 से भी कम लड़कियां पैदा हो रही हैं हर 1000 लड़कों के।
वजह क्या है, क्या कानून पर्याप्त नहीं है या केवल कानून काफी नहीं है और ज्यादा कुछ किए जाने की जरूरत है?
जैसा कि अक्सर कहा जाता है कानून बहुत ही जरूरी है, महिलाओं के बहुत सारे अधिकार कानून से ही प्राप्त होते हैं, तो कानून डेफिनेटली जरूरी है पर अपने आप में कानून काफी नहीं है। दुनिया भर में देखा गया है कि कानून के बावजूद ये कुप्रथाएं प्रचलित हैं। इनसे जूझने के लिए और कई पैमानों पे जरूरत है प्रयासों की, जैसे कि महिलाओं और पुरुषों के समानता पे आधारित जो सामुदायिक जागरूकता है उसकी जरूरत है। ये एक मूल्य और इस विवेक का स्थापित होना कि महिलाएं या लड़कियां किसी भी पुरुष या किसी भी लड़के से कम नहीं है और उनका भी समान अधिकार है। और एक बार ये विचार स्थापित होता है तो उस विचार को फिर क्रियान्वित करने की जरूरत है। कैसे संपत्ति, जमीन, जायदाद एवं मकान के समान अधिकारों से महिलाओं के लिए रोजगार से, राजनीतिक भागीदारी से और सामाजिक सुरक्षा से भी। तो जैसे कि मैंने कहा कि कानून से काफी आगे जाने की जरूरत है, जरूरत ये है कि महिलाओं के अधिकार को हर क्षेत्र में स्थापित करना।
हाल ही में आई कुछ रिपोर्टों में ये भी कहा गया है कि COVID-19 महामारी के कारण इन क्षेत्रों में हुई प्रगति पर विपरीत असर पड़ सकता है, इस बारे में रिपोर्ट में क्या कोई विश्लेषण दिया गया है?
जी, महामारी से का असर इन कुप्रथाओं पे पड़ने की आशंका तो जरूर है, पर इस पर कोई हार्ड डेटा नहीं है। इस पर एक विश्लेषण किया गया है जो UNFPA ने एवनर हेल्थ, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के साथ किया है। इस विश्लेषण के अनुसार विश्व भर में अनुमान लगाया गया है कि जो महिला खतना है और बाल विवाह है दोनों में ही काफी हद तक वृद्धि हो सकती है महामारी के असर के कारण, क्योंकि जो महामारी है उसका परिवारों के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है, वो हमारे आंखों के सामने हमें दिख भी रहा है। काफी आर्थिक कठिनाइयां हो रही हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं और काफी सेवाओं तक लोगों की पहुंच भी पे भी असर पड़ा है।
तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए UNFPA की रणनीति क्या है? भारत में खासतौर पर UNFPA किस तरह के प्रयास कर रहा है?
UNFPA भारत में तीन परिवर्तनकारी परिणामों पे केंद्रित अपने एफर्ट्स को केंद्रित करता है। एक है जो लिंग आधारित हिंसा है और कुप्रथाएं हैं उसको समाप्त करने के लिए, दूसरा परिवार नियोजन से जुड़े सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और तीसरा मातृ मृत्यु को समाप्त करने के लिए। तो ये तीन जो परिणाम है या लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए UNFPA कई स्तर पर काम करती है, व्यक्तिगत स्तर पर, पारस्परिक सामुदायिक स्तर पर और सेवा प्रणाली या सेवा कर्मियों के साथ मिलकर भी UNFPA काम करती है। इन सबसे परे UNFPA सरकार के नीतिगत प्रयास है उनसे से भी जुड़ के काम करती है।